एक और जो रानी का चरित्र है वो इस प्रकार का है कि उसने सत्संग के लिए विष दे दिया। ये तो सत्संग और मिले इसके लोभ में, और सत्संग प्राप्त हो जाए इसके लिए उसने विष दिया। एक राजकुमारी एक नगर में जाकर विवाहित हुई। वो परिवार विमुख था, वहां कोई भगवत भक्त नहीं था, सब विमुख थे। और ये जो राजकुमारी थी इसके घर में संतों का आवागमन था। संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज पधारते थे इनके घर में। ये महाराष्ट्र की बात है। संत ज्ञानेश्वर पधारते थे, बड़े बड़े सिद्ध आते थे। तो वह व्याकुल रहती थी कि आज हमें संतों का संग नहीं मिलता, संत संग मिल जाए, कैसे मिले। अपनी दासी से उसने कहा कि कभी संत इधर से निकले तो बताना। संत सेवा जिस क्षेत्र में होती उस क्षेत्र में संत घूमते हैं, और जहां का राजा विमुख होता वहां संत भी नहीं जाते, क्योंकि सुरसाधु चाहत भाव। एक बार संत ज्ञानेश्वर जी की जमात उधर पधारी, और उसमें उस रानी ने जब दासी से सुना कि संत आए हैं, बस उसने अपने एकमात्र पुत्र को विष दे दिया। अब तो बालक की मृत्यु हो गई, सब रोने लग गए। अब वो विमुख जीव थे, उनकी तो पुत्र में बड़ी आसक्ति थी, वे तो पत्थर खा खा के गिर रहे थे। रोते रोते रानी ने कहा कि मैं एक उपाय जानती हूं पुत्र को जिलाने का। अरे तो तू तो मां है, उपाय जानती फिर करती क्यों नहीं। बोले हमारे बस की बात नहीं, यदि संत महात्मा यहां आवे, बैठकर कथा कीर्तन करें, उनका पूजन हो, उनका चरण धोकर चरणामृत इस बालक के मुख में डाल दिया जाए, ये बालक जीवित हो सकता है। बच्चे वाली माँ बाहर चली जाए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो ऐसे विमुख जीव थे कि वे संत को आज तक देखा ही नहीं था उन्होंने। तो वो कहने लगे कि कितने पैसों में आते हैं, किस दुकान पर मिलते हैं, उनकी पहचान क्या है। अरे बोले वो कोई वस्तु नहीं है जो किसी दुकान में बाजार में मिले। तब क्या। बोले वो संतों की परख हमारी दासी जानती, क्योंकि हमारे घर में संत महात्मा आते थे, वो दासी जानती है। दासी तुम्हें कोई खबर मालूम है संत हैं। बोले हाँ, अभी तो अपने राज्य की सीमा में ही संतों की जमात पधारी है, लेकिन आपको चलना पड़ेगा। रानी ने समझा दिया, दासी ने समझा दिया कि देखो वहां जाकर बेटा मर गया ये बात मत कहना, वहां जाकर के साष्टांग चरणों में प्रणाम करना, रोते हुए चरणों में प्रणाम करना और कहना हे संत भगवान, आप अपने परिकर के साथ कृपा करके हमारी कुटिया में पधारें, आपकी चरण से हमारी कुटिया पवित्र हो, आपके वचनामृत से हम सब कृतार्थ हों, आपकी सेवा का अवसर मिले, हम लोग धन्य हों, आप कृपा करके पधारें। विनम्र भाषा में उनसे बोलना, राजा बन के मत जाना। अब मरता क्या न करता, उसे तो अपना स्वार्थ सिद्ध करना था, और उसके भीतर कोई प्रेम नहीं था, वो तो बेटे की याद आने से रो रहा था। और संत बड़े सरल होते हैं। संत परस्पर कहने लग गए कि हमने तो सुना था कि यहाँ के राज्य का राजा बड़ा विमुख है, लेकिन ये तो बड़ा भारी संत सेवी है। संतों का दर्शन करने मात्र से इसको अश्रुपात हो रहा है, पृथ्वी पर लौटकर साष्टांग कर रहा है, ये तो बड़ा भारी भक्त है। आओ भगत राज कैसे पधारे। कहा महाराज आप अपनी हमारी कुटिया को और अपनी चरण रस से पवित्र कर दीजिए। चरण रस से पवित्र कर दीजिए। संत जैसे ही ज्ञानेश्वर जी महाराज थे उसमें जमात के मुखिया, संत ज्ञानेश्वर जी की जमात जैसे ही राजा के महल में पहुंची, वहां देखा पुत्र मरा हुआ पड़ा है। अरे इस अवस्था में तुमने क्यों बुलाया। तब तक रानी ने आकर चरण पकड़ करके प्रणाम किया। ज्ञानेश्वर जी समझ गए कि अमुक राजा की बेटी है। अच्छा बेटी तुम इसी घर में आई हो। हाँ गुरुदेव। कान में कहा गुरुदेव आप संतों के चरण किसी भी प्रकार से घर में आ जाएं, इसीलिए इतना बड़ा बलिदान दिया है, हमारे भाव की आप रक्षा करें। ज्ञानेश्वर जी विराजमान हो गए हैं, रानी ने संतों का पूजन किया है, चरण धोकर जैसे ही चरणामृत बालक के मुख में छोड़ा है, बालक उठ करके बैठ गया है। बोलो संत भगवान की, श्री ज्ञानेश्वर महाराज की। और अब उन लोगों को पता चल गया कि संतों के संग की क्या महिमा है, फिर उनकी संतों में आसक्ति हो गई। तो संतों में जिनकी आसक्ति हो जाती है वो मोक्ष द्वार मुपावृतम, मोक्ष का द्वार खुल जाता है। कितने ऐसे चरित्र आते हैं कि जीव सर्वथा अनधिकारी था, उसका अधिकार नहीं था भगवत दर्शन का या संत दर्शन का, लेकिन संत ने आसक्ति कर ली उस जीव में, उसे भगवत साक्षात्कार हो गया। हजार जन्म में भी अधिकारी नहीं था भगवत प्राप्ति का, लेकिन संत ने संकल्प कर लिया इसे भगवान मिले, भगवान मिल गए। संत में आसक्ति हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। माता जी ने पूछा कि भगवान आप कृपा करके यह भी बताने कि वे संत होते कैसे हैं, ये संतों में की महिमा इतनी है, संतों में आसक्ति करनी चाहिए, लेकिन संतों के लक्षण क्या हैं, संतों की महिमा क्या है, आप कृपा करके बताइए। संतों की महिमा का वर्णन तो संभव है ही नहीं, क्योंकि विधि हरि हर कवि को विदवानी कहत साधु महिमा सकुचानी सो मोसन कही जात न कैसे साक बणिक मणि गुण गण जैसे। साग भाजी बेचने वाला हीरे जवाहरात की कीमत क्या बतावेगा, ऐसे ही हम लोग भठियारे हैं, हम लोग संत की पहचान कैसे कर सकते हैं। कुछ संत के लक्षण गिनाए गए, तीन श्लोकों में संत के लक्षण का वर्णन किया गया, संत की रहनी का वृत्ति का वर्णन किया गया। लेकिन एक बात याद रहे, ध्यान में रहे, वो ये है कि संत के जितने लक्षण पुराणों में आए, महाभारत में आए अथवा गीता में आए अथवा भागवत में आए या रामचरितमानस में आए या अन्य किसी भी ग्रंथ में या किसी संत की वाणी में संत के लक्षण आए हैं, जितने भी संत के लक्षण आए हैं वे लक्षण इसलिए हैं कि उन लक्षणों को हम अपने में लाने का प्रयत्न करें, दूसरों में निरीक्षण परीक्षण करने के लिए भी लक्षण नहीं आए। हम अपने में तो साधुता देखें नहीं और दूसरे की साधुता को आंकने लग जाएं। पहचान करके यदि संत की सेवा की गई तो संत की सेवा नहीं बनेगी, संत का अपराध हो जाएगा, क्योंकि जो वस्तुतः संत हैं वे तो कोई ऐसा नाटक रच देंगे कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि महात्मा है। और जो वस्तुतः महात्मा बिल्कुल भी नहीं, बाहर से जिन्होंने केवल स्वरूप बना रखा है, वे इतना कुशल अभिनय करके बता देंगे महात्मा बनने का कि हो सकता आप चक्कर में आ जाएं। कितने लोग चक्कर में आ जाते हैं बाद में पता चलता है। इसलिए गोस्वामी जी ने तो यहां तक कहा, तुलसी देख सुवेश भूल ही मूढ़ न चतुर नर, तुलसी देख सुवेश भूल ही मूढ़ न चतुर नर। संत का पहचानना बड़ा कठिन है, इसलिए संत के लक्षण हमारे भीतर आवे और श्री ठाकुर जी हमारे ऊपर कृपा करें। कबहू कहो या रहन रहूंगो श्री रघुवीर कृपालु कृपाते संत स्वभाव रहूंगो, ये अपने में इनको लाने की चेष्टा करनी चाहिए। और बाकी जितने संत मात्र हैं जिनका वेश देखने में लग रहा है कि ये महात्मा है संत हैं, अब भले ही संत के लक्षण हैं या नहीं है इस पर विचार न करें, क्योंकि अंतर का भाव तो अंतर्यामी समझे, हम कोई अंतर्यामी है, हमें तो जो बात दिखाई पड़ रहा है उसको देखकर प्रणाम सेवा। हाँ ये बात अवश्य है कि यदि संग करने की इच्छा होवे कि हम संग करें अपनी आध्यात्मिक उन्नति को बढ़ाएं, ऐसी यदि इच्छा है तो जरूर थोड़ा सा विचार करें कि जिन संत के संग करने हम जा रहे हैं ये हमारे मन मत सिद्धांत के अनुरूप हैं कि नहीं। इन संत का संपर्क करके हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकेंगे कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा मार्ग ही बदल जाए। इसी को श्री स्वामी भगवत रसिक देव जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा, इष्ट मिले। इष्ट मिलना चाहिए, जिसका संग हम करें उसका उसका इष्ट, हमारा इष्ट मिलना चाहिए। अब हमारा इष्ट तो हम कहते हैं कि हमारे मुरली मनोहर श्याम सुंदर कितने प्यारे हैं, कितने अच्छे हैं, और दूसरा महात्मा वो भी सिद्ध कोटि का है, लेकिन वो कहते हमारे इष्ट देवता भयंकर यमदंड लिए हुए काल भैरव हमारे इष्ट देवता हैं। देवता तो उसके भी हैं, लेकिन हम कहते फूल तुलसी की उपासना, वो कहता मध्यमांस की उपासना, तो झगड़ा हो जाएगा कि नहीं, या फिर हमें पथभ्रष्ट होना पड़ेगा। तो इष्ट मिले, मन मिले, मत मिले। इष्ट मिले, मन मत मिले, मिले भजन रस रीति। भजन की रस रीति मिल जाए, ऐसे संत का संग करना चाहिए। भगवत ऐसे संतों अवश्य कीजिए प्रीति, ऐसे संत से प्रेम करो, ऐसे संत का संग करो। और जब संत का संग मिल जाए और भजन का मार्ग समझ में आ जाए तो बस फिर मौज से भजन करो। नदी किनारो गिरि शिखर, नदी किनारो गिरि शिखर, बाग इकोसो देख भगवत जन बिल में तहां बाढ़े भजन विशेष। भजन का मार्ग समझ में आ जाए तो बस नदी किनारे, किसी नदी के एकांत किनारे में, अथवा गिरि शिखर, अथवा एकांत किसी बगीचे में बैठ करके भजन करे, ध्यान करे, भगवत जन बिल में तहां बाढ़े भजन विशेष, भजन की वृद्धि होगी। लेकिन उसमें भी एक सावधानी रहे, सत्संग करते करते परिपक्व स्थिति प्राप्त हो जाए तो एकांत में रहने का प्रयत्न करें। यदि परिपक्व अवस्था प्राप्त नहीं हुई है तो समाज में रहकर, संतों के बीच में रहकर के भजन करें, क्योंकि सिद्धों के लिए एकांत सुखदाई है और अधकचरे साधकों के लिए एकांत दुखदाई है। कभी कभी एकांत ही पतन का कारण बन जाता है, इसलिए ये समझे, ये एक उसमें एक सुधार है। श्री ठाकुरदास जी महाराज ने, बाबा ने एक बड़ी सुंदर घटना सुनाई। कहते कि पंडित जी के साथ भिक्षा के लिए जा रहे थे तो कंजड़, ये जो सांप आप सपेरे होते हैं ना कंजड़, तो एक कंजड़ तो बाबा जी जैसा वेश बना रहे थे, गिरिराज जी की परिक्रमा में बैठी रहते हैं, चंदन लगाए, गोपी चंदन लगाए, कोई त्रिपुंड लगाए, कोई रुद्राक्ष की माला पहने, तो वे सामने खड़े थे मंगता। उनको देखते ही पंडित जी ने पृथ्वी पर मस्तक रख करके प्रणाम किया। तो श्री ठाकुरदास बाबा कहते कि हमने कहा कि महाराज ये तो कंजड़ हैं, तो ऐसे कान पर हाथ रख करके कहते हैं कि अरे हमें तो संत दिख रहे हैं और तुम कह रहे कंजड़ो, अरे प्रणाम करो इनको प्रणाम। ये वेश निष्ठा ऐसा मित्र कहां मिलेगा। अद्वितीय निष्ठा। संत के स्वरूप को संत मान करके निष्ठा करना, उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास, ये भक्तमाल का सिद्धांत है। ये सिद्धांत सबके गले के नीचे नहीं उतरता, इसलिए भक्तमाल की कथा सबके बीच में कहने की भी कथा नहीं। और भक्तमाल की महिमा यह है कि बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है, दूर नहीं, भक्ति के स्वरूप को भक्तमाल का आश्रय लिए बिना अति दूर कहा गया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़े सुंदर लक्षण बताए, तितिक्षव कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजात शत्रवः कांता साधवः साधुभूषण। भगवान के भक्त कैसे होते हैं? तितिक्षवा, वे सहनशील होते हैं। सबसे पहला लक्षण है संत का तितिक्षा, सहनशीलता। तितिक्षा का तात्पर्य होता है दैहिक दैविक भौतिक समस्त प्रकार के दुखों को अपने इस शरीर का ही प्रारब्ध मानकर भगवत कृपा के सहारे आनंद पूर्वक भोग लेने का नाम है तितिक्षा। यह वृत्ति प्रायः आ जाती है कि वस्तुतः हम सम्मान के योग्य हैं, इसलिए हमारा सम्मान हो रहा है। और जब ये भावना आ जाएगी चित्त में कि हम सम्मान के योग्य हैं, इसलिए हमारा सम्मान हो रहा है, तो समझ लेना कि बस पतन चालू हो गया। अब यहाँ के बाद उन्नति नहीं, यहाँ के बाद अब पतन है, क्योंकि मैं सम्मान के योग्य हूँ इस भावना के आते ही फिर प्रतीक्षा सबसे विदा हो जाएगी। फिर अपमान न होने पर भी अपमान की अनुभूति होने लग जाएगी। हमको किसी ने गाली नहीं दी, लेकिन केवल प्रणाम नहीं किया तो हम आग बबूला हो जाएंगे। अरे बड़ा सिद्ध बन गया और हमको दंडौत भी नहीं करता। बिचारी ने गाली नहीं दिए, केवल प्रणाम नहीं किया, इस बात से नाराज। तो जो जितना अधिक सम्मान को बचा सकता है वही अपमान को भी बचा सकता है, और जो सम्मान नहीं बचा सकता वो अपमान को भी नहीं बचा सकता है। भगवान के भक्त अपमान को बहुत प्रेम से बचा जाते हैं। क्यों? कहते भाई देखो, अपमान से पाप नष्ट होते हैं और सम्मान से पुण्य नष्ट होते हैं। भगवान बड़ी कृपा कर रहे हैं, भगवान से मिलने में कोई पाप आ गए होंगे प्रतिबंधक बन के, तो उन पापों को नष्ट करवा रहे हैं ठाकुर जी अपमान के द्वारा। वाह, बड़ी कृपा है। इसी को कहा नीचापमानम सुधा, सन्मानम कलयाति घोर गरलम, नीचापमानम सुधा। सन्मान विष है और अपमान अमृत है। और भक्त को कोई गाली दे दे, अपमानित कर दे, तो उसे बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो तो भगवान के सामने पहले ही स्वीकार कर रहा है, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राही माम पुंडरी काक्ष सर्व पाप हरो हरि। अब इधर तो भगवान के सामने हम प्रार्थना करके गए, पापो हम पाप कर्मा हम, और किसी ने कहा हे पापी कहाँ जा रहा है, बस कान खड़े हो गए, आंख लाल हो गई। क्या बोला, फिर से बोलना, जवान खींच लूंगा। इसका मतलब है कि ठाकुर जी के सामने झूठ बोल के आए थे। जो संत स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी जितन दियो ताहि विसरायो ऐसो नमक हरामी है, उन संतों को कोई कुटिल कह दे, खल कह दे, कामी कह दे, तो उन्हें कोई दुख नहीं होता। कहते अच्छा हुआ एक गवाह मिल गया हमको भगवान के दरबार में। हमारे वृंदावन के रंग मंदिर के संस्थापक श्री रंगाचार्य स्वामी, जिन्होंने मूल में रंग मंदिर की स्थापना की थी, बड़े भक्त थे, आचार्य थे, बिना उनकी भक्ति के इतना बड़ा कार्य कैसे हो सकता। रंग जी की सवारी बगीचा पहुंची और वहां एक केशवाचार्य नाम के विद्वान आए हुए, बड़े आटू कवि थे, तो शिक्षणी छंदों में उन्होंने कुछ श्लोक बना करके और रंगाचार्य स्वामी की स्तुति की, तो रंगाचार्य स्वामी उन शब्दों को सुनकर एकदम उदासीन हो गए और वहां से उठ करके ठाकुर जी की सेवा में लग गए। अब कोई कवि अपनी कोई बात सुनावे, उसको कोई न सुने तो उसे कितनी पीड़ा होती है। कवि कवि के काव्य का तिरस्कार बड़ा असह्य होता है कवि के लिए। चिढ़ गए वो भीतर ही भीतर, बोले एक बार तो कहते कि पंडित जी आपकी कवित्व शक्ति बहुत अच्छी है, आपने बहुत बढ़िया बनाया, इसने एक शब्द भी नहीं कहा, ये बड़ा निष्ठुर हृदय का है। अंत में जब रंग जी की सवारी लौट करके मंदिर पहुंची तो भगवान के सामने वहां आलवंदार का पाठ होता है और विज्ञप्ति दैन्य के श्लोक कहे जाते हैं। तो जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर रंगाचार्य स्वामी ने कहा न निंदितम कवे सहस्र सोयन्न मयाव्यथाय सोहम विपाकावसरे मुकुंद क्रंदामि संप्रेत्य गते स्तवाग्रे। हे नाथ, कोई ऐसा निंदित कर्म नहीं जो मैंने हजारों हजारों बार न किया हो, और जब उनका फलभोग उपस्थित हो गया तो मैं रो रहा हूँ क्रंदामि, केवल आप ही हमारी गति है। पापो हम पाप कर्मा, हम पापात्मा पाप संभवा, मैं पापी हूँ, पाप कर्मा हूँ, पापात्मा हूँ, पाप से पैदा हुआ हूँ, हे पुंडरीकाक्ष हमारी रक्षा करें। वे तो श्लोक गा रहे थे और वो संस्कृत के विद्वान चिल्लाकर बोले कि प्रभु बिल्कुल सत्य है, ये जो कुछ कह रहे हैं ये बिल्कुल सोलहान सत्य है, ये ऐसा ही आदमी है, अच्छा होता तो विद्वान का आदर करता। इतना सुनते ही श्री रंगाचार्य स्वामी के गले में मंगल सूत्र पड़ा था स्वर्ण का, वो ब्राह्मण के गले में डाल दिया और हृदय से लगा करके कहा, कंधे पर हाथ रख लिया और अत्यंत सजल नेत्रों से कहा, हे नाथ, अब तक आपको कोई गवाही नहीं मिल रहा था तो आप हमारी बात पर विश्वास नहीं करते थे, आज इन विद्वान ब्राह्मण ने हमारी गवाही दे दी कि हम ऐसे ही हैं, अब तो आप कृपा करें। इतना सुनते ही वो विद्वान तो लज्जित हो गया, पानी पानी हो गया, चरणों में गिर गया, कहा नहीं, आप तो हमारे गवाह हैं ठाकुर जी के दरबार में, गवाह के बिना बात नहीं स्वीकार की जाती, आपने गवाही दी है हमारे पाप की, वाह बहुत अच्छी बात, अंत में भी केशवाचार्य उनके शिष्य हो गए। दक्षिण में एक महापुरुष श्री अनंताचार्य, दुष्टों ने क्या किया कि जूतों की माला बनाकर उनको धारण करा दी। बड़े प्रतिष्ठित आचार्य, गले में जूतों की माला धारण करा दी। आपने कहा ज्ञानावलंबका केचित केचित कर्मावलंबका वयंतु हरिदासा नाम पादत्राणावलंबका। उस अपमान को झेल करके भी ये गदगद हो गए, उन्होंने कहा वाह, कोई ज्ञान के सहारे पार होंगे, कोई कर्म के सहारे पार होंगे, हम तो संतों की पानी के सहारे ही भवसागर से पार हो जाएंगे, हमको तो केवल संतों की पानियों की का भरोसा है। ये संतों की स्थिति ये है, अपमान को सहन करने की स्थिति। अभी आप लोगों ने कल सुना बिदुर जी का कैसा अपमान हुआ, लेकिन बिदुर जी के मस्तक पर क्रोध की रेखा नहीं आई, बिदुर जी ने सहन कर लिया अपमान को सहन करना। भगवान ने अपमान को सहन करना सिखाया। आपका कोई एकांत में अपमान कर दे आपको बुरा नहीं लगेगा, जहां दो चार लोग आपको जानते हो अपमान करे तो असह्य हो जाएगा, भरे बाजार में अपमान करे तो और कठिन हो जाएगा सहन करना, और कथनचित कोई घर में घुस के अपमान करे तो और अधिक कठिन हो जाएगा अपमान को सहन करना। मान लो घर में भी सहन कर ले बाहर के व्यक्ति के द्वारा अपमान, गृहिणी के पास बैठा हो और उस समय कोई अपमान करे तो और अधिक असह्य हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक पुरुष वो गृहिणी के समक्ष अपनी प्रतिष्ठा को बचाकर रखना चाहता है, क्योंकि उसके सामने प्रतिष्ठा को नहीं बचावेगा तो रोज ताने सुनने पड़ेंगे कि तुम तो कायर हो, किसी काम लायक नहीं हो, लोग घर में घुस के तुम्हें मार जाते हैं और तुम तो किसी लायक नहीं हो, ये बार बार सुनना पड़ेगा। इस कारण से वो प्रत्येक पुरुष की भावना होती है। हम तो वृंदावन में देखते हैं बंदर वैसे घुड़की नहीं देगा, बंदरिया उसके पास में बैठी हो बंदर से आंख मिला दो खो खो करके खाने को दौड़ेगा। माने ये हमने अनुभव किया कि वो बंदरिया के निकट रहने पर अपनी शक्ति का अनुभव कराता है, बंदरिया नहीं हो तो पूंछ नीचे डाल के चला जाए कुछ नहीं बोलेगा। बताओ मनुष्य की छोड़ दो, पशुओं में ये वृत्ति है, ये पशुओं में ये वृत्ति भरी रहती है, ऐसी स्थिति है। अब देखो भगवान सर्वशक्तिमान है और भगवान को भगवान के वैकुंठ में जाकर भृगु जी ने पादप प्रहार किया, चरण प्रहार किया, और भगवान ने अपमान सहन करने की कला सिखाई। ठाकुर जी उठ के बैठ गए, भृगु जी के चरण कमल को गोद में रख लिया और चरण दबा करके कहने लग गए, चरण दबा करके, चरण दबा करके कहने लगे कि हे मुनिनाथ, मेरा वक्षस्थल कठोर है, आपका चरण कमल कोमल है, वैकुंठ के द्वार पर पहुंचकर हमें स्वागत करना चाहिए था लेकिन नहीं हो सका प्रमाद के कारण, लेकिन धन्य है आपकी करुणा, हम जैसे प्रमादी को आपने अपनी चरण रज दे करके कृतार्थ कर दिया। अब तक लक्ष्मी मेरे वक्षस्थल में विराजती थी, लेकिन हम लक्ष्मी की चंचल प्रकृति को देखकर सोचा करते थे कहीं लक्ष्मी हमको छोड़ के न चली जाए, लेकिन आज विश्वास हो गया आपकी चरण रज का स्पर्श होते ही अब ये लक्ष्मी हमको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। भृगु जी तो एकदम गदगद हो गए, वहां से नमस्कार करके भृगु जी मन ही मन चल पड़े। ये भगवान तो या तो भगवान इस प्रकार के हैं या उन भगवान के भक्त ऐसे हैं जो बड़े से बड़े भारी से भारी अपमान को झेल कर भी प्रसन्न रहते हैं उनके ऊपर और असर नहीं पड़ता। सम्मान होते समय समझ लेते हैं यह तो गुरुजनों के द्वारा दी गई वैष्णवता का सम्मान है, मस्तक पर तिलक है, गले में तुलसी है, राम राम करते हैं, बस इसी को देख के लोग प्रणाम कर लेते हैं। ये मलमूत्र का भांड है, इसमें सम्मान के योग्य कोई वस्तु तो है नहीं। क्या चीज है सम्मान के योग्य? ये तो भगवान के नाम का, भगवान की भक्ति का सम्मान हो रहा है, ये अच्छा है। अपमान हुआ तो हमारे कोई पाप से अपमान हो रहा, पाप नष्ट हो रहे, बहुत अच्छा हो रहा है। सम्मान अपमान दोनों में सम रहते हैं। श्री तुकाराम जी, आपके भाइयों ने हिस्सा बांट कर लिया और तुकाराम जी को केवल महाजनी का धंधा था, बही खाता दे दिए कि बस ब्याज वसूल और निर्वाह करो। आप ब्याज वसूलने गए, किसान कहते तुकाराम जी हम तो बड़े गरीब हैं, हमारे पास खाने को भी नहीं है। दो चार जगह गए और लोगों ने देने में आनाकानी करी तो जितने जो बही खाते के रिकॉर्ड थे ना सबको पत्थर बांध के चंद्रभागा में डुबा दिया, और जो खाली कागज थे बही थी उनमें श्री ठाकुर जी के लिए प्रेम पत्र लिखने लगे अभंग। कुछ उद्यम ही नहीं करते तो घर में आखिर क्या रहेगा खाने को। पत्नी ने कहा कुछ तो खेत से ले आओ। आप गन्ना लेकर आए, छोटे छोटे बालकों ने गन्ना मांगे, सब में श्री कृष्ण का दर्शन करते गन्ना आपने दे दिए। एक गन्ना लेकर लौटे, पत्नी के क्रोध की सीमा नहीं रही, उसने हाथ से गन्ना छीन करके आपकी पीठ पर पूरी शक्ति से दे मारा। गन्ने की मार बड़ी भयंकर होती है क्योंकि उसमें रस होता है, गन्ना पीठ में लगे तो चिन्ह पड़ जाता है, इतनी तेज मार होती गन्ने की। गन्ना टूट गया, पत्नी से अपमान तो होने पर भी दुख नहीं हुआ, आप मुस्कुराने लगे और आपने कहा देवी तुम बड़ी बुद्धिमती हो, हम सोच रहे थे कि गन्ना तो एक है और चूसने वाले घर में हम दो लोग हैं तो अब हिस्सा कौन बांटेगा, तो बड़ी भली हो तुम, तुमने दो टुकड़े कर दिए, अच्छा हुआ एक टुकड़ा मैं चूस लूंगा और जो तुम्हारे हाथ में उसे तुम चूस लेना, जो नीचे गिरेगा उसको मैं चूस लूंगा। और प्रेम से विट्ठल का भजन करना है, अपन को करना ही क्या है। इतना सुनते ही उनकी पत्नी जीजाबाई के नेत्रों के सामने अंधकार छा गया, वह थर थर कांपने लगी। हाय, ऐसे भोले भाले महान संत रूप में प्राप्त पति का तिरस्कार, हाय मेरी क्या दशा होगी। अंधकार छा गया, थर थर कांपने लगी, रोते हुए चरणों में गिर गई और उसने कहा कि अब कैसी भी परिस्थिति आवे मैं अब ऐसा अपराध नहीं करूंगी, आप प्रेम से भजन करें और मैं आपकी सेवा करूं। जीजाबाई का जीवन ही परिवर्तित हो गया और अहर्निश कीर्तन करते तुकाराम जी, अहर्निश। एक बार तो भंडारी पर्वत पर तुकाराम जी कीर्तन कर रहे थे, देहू गांव के निकट पहाड़ है आज भी महाराष्ट्र में जहां तुकाराम जी भजन करते थे, वहां कीर्तन करते जा रहे थे। आपकी पत्नी घर घर के ठाकुर सेवा करके ठाकुर जी को लेकर के, ठाकुर जी के प्रसाद को लेकर के, और वो जैसे ही वहां पहुंची तो पर्वत पर खोजना पड़ता था, जैसे ही वहां पहुंची तो क्या देखती है कि कांटा लग गया उसके तलवे में। तो जब कांटा लगा तो वह इतना भारी कांटा था कि भीतर तक घुस गया। अब ठाकुर जी को गाली देने लगी जीजाबाई, कहने लगी इस विट्ठल ने हमारे भोले भाले पति को बावरा बना दिया, पागल बना दिया। ये आ जाए हमारे सामने तो मैं खबर ले लूं इसकी। ठाकुर जी सामने प्रकट हो गए, छद्म में नहीं प्रत्यक्ष में, और कहने लगे कि भक्तानी जी हमको गाली क्यों दे रही हो, है आपको कांटा लग गया हम निकाल देते हैं। तो जीजाबाई कहती हैं कि मेरा स्पर्श मत कर, मेरा स्पर्श करेगा तो मैं पति सेवा के लायक नहीं रह जाऊंगी। मैं जानती हूँ तेरे स्पर्श में तेरे दर्शन में ऐसा जादू है कि फिर वो किसी काम लायक नहीं रह जाएगा, मैं पति की सेवा नहीं कर सकूंगी। ठाकुर जी ने जीजाबाई के चरण को गोद में रखा है और उंगली से पकड़ने में कांटा नहीं आ रहा था, अपने मुखारविंद को उसके चरण तल में लगा करके दांत से कांटा निकाला, ऐसा हमने संतों से सुना। पीताम्बर को फाड़ करके पट्टी बांध दी है और कंधे पर बिठा करके तुकाराम जी तक लेके गए। तुकाराम जी ने इस घटना के बाद फिर कहा कि देवी तुम रोटी लेकर प्रसाद लेकर मत आया करो, मैं स्वयं ही घर पर पहुंच करके प्रसाद ले लिया करूंगा। वे तुकाराम जी एकनाथ जी के ऊपर मलेच्छ ने 100 बार थूका और आप गंगा स्नान गोदावरी स्नान करने चले गए, आखिर वो नतमस्तक हुआ। तितिक्षा सबसे पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण है कारुणिका, संत में अपार करुणा होती है, जीव मात्र के प्रति करुणा का भाव। पूज्य श्री बाबा अवध पहुंचे, मार्ग में पड़े हुए थे, आप उनको उनके निकट बैठ गए। लोगों ने कहा चलिए यहाँ तो, अरे तो मरणासन्न से मरणासन्न स्थिति। बोले यहाँ कोई सियार कुत्ता खा जाएगा। अरे बोले मुर्दे को खाते जीवित को नहीं खाते। दूसरे दिन आए तो कुत्ते और सियार उनके शरीर को कुछ नोच गए थे। बाबा बड़े दुखी हो गए कि लोगों की बातों में आकर इस दुखी महात्मा को छोड़ दिया, वहीं उसके शरीर के पास बैठ गए। आखिर कोई दूसरे बंगाली संत आए जो परिचित थे, उन्होंने उस महात्मा को लिया और हॉस्पिटल में भर्ती कराया। लेकिन बाबा उस संत के कष्ट से इतने द्रवित हो गए कि रामार्चन में जाकर के भी आपने प्रार्थना की, हे श्री रघुनाथ जी आपका अर्चन हो रहा, महात्मा स्वस्थ हो जाए, आपके चरणों की उन्हें प्राप्ति हो, या तो वे तुरंत पूर्ण स्वस्थ हो जाए या फिर आप उन्हें जल्दी अपने चरणों में बुला लें। बाबा की प्रार्थना करते हुए श्री सीताराम जी के चरण कमलों में पहुंच गए, उनका कल्याण हो गया। और जब वे पधार गए तो बाबा ने 250 रुपया भाई जी से मांगे, तो 10 रुपया रखते थे, 10 रुपया छूते भी नहीं थे। भाई जी हंसने लग गए, बोले क्या करोगे, कई संत के लिए रामार्चा होगी उसका भंडारा होगा। एक करुणा, संसार के लोगों में अपने शरीर के संबंधियों के प्रति तो करुणा का तनिक भाव होता है, और वो भी उतने ही देर तक के लिए होता है जितनी देर तक के लिए उनकी स्वार्थ की पूर्ति हो रही। स्वार्थ किसी से न रह जाए तो उनके प्रति भी उनकी करुणा नहीं रहती है। लेकिन महात्मा जीव मात्र के प्रति करुणा का भाव, कारुणिका, जीव मात्र के प्रति करुणा उनके हृदय में होती है। सुहृदः सर्वदेहिनाम्, प्राणी मात्र के सच्चे हितैषी होते हैं। करह में एक संत रहते थे श्री पटियावारे बाबा, श्री राम रतन दास जी महाराज, उनके स्थान में एक कुतिया थी जो बिल्ली के बच्चों को खा जाया करती थी, कुत्ता बिल्ली का व्रत था। एक बार बिल्ली ने बच्चे दिए और बिल्ली जो थी वो मर गई, छोटे छोटे बच्चे थे उनको खाने के लिए कुतिया जैसे ही बड़ी, बाबा का हृदय व्याकुल हो गया और बाबा ने कहा ए कुतिया कहाँ जा रही है, देखो अब तक तो तेरो बातें बैर हो पर अब उन बच्चान की मैया मर गई है और अब तू मैया बन के इनको लालन पालन कर। बाबा ने कहा वो कुतिया वो बिल्ली के बच्चों को चाटने लग गई और उस कुतिया ने अपना दूध पिला करके बिल्ली के बच्चों को पोसा, उसकी फोटो ली गई, कुतिया बिल्ली के बच्चों को दूध पिला रही है इसकी फोटो ली गई, और उसके फोटो लेने वाले कालीचरण जी अभी भी जीवित हैं। करुणा और उनकी करुणा का प्रभाव उस हिंसक जीव के ऊपर कितना पड़ा जो उस कुतिया ने मां बन करके पोषण किया, ये सच्ची घटना है। सुहृद सर्वदेही नाम, वे प्राणी मात्र के सच्चे हितैषी होते हैं, जीव मात्र के सच्चे हितैषी होते हैं। उनके यहाँ कोई जीव वह शरीर छोड़ने लग जाए तो उसके लिए भी वे संकल्प करते हैं, हे नाथ आप कृपा करके इसे अपना ले लें, इसको आपकी प्राप्ति होगी। वे सच्चे हितैषी होते हैं। बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज जब पूर्ण स्वस्थ थे, चंद्र सरोवर में विराजते थे, तो किसी गौ का शरीर छूटने लग जाए तो ब्रजवासियों को लेकर पहुंचते, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कीर्तन करवाते और दीपक जलाते, गिरिराज जी का चरणामृत उसको देते, और जब तक वो गाय ठाकुर जी के धाम को नहीं चली जाती तब तक कीर्तन में बैठे रहते और उसको फिर संस्कार कराते। कितनी करुणा, क्या स्वार्थ है, वहां से कुछ लेते नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, लेकिन संत के हृदय की करुणा बड़ी विलक्षण है। हमारे वृंदावन में खाक चौक में एक गाय रहती थी, ब्रह्मचारिणी थी, कोई बच्चा अच्छा नहीं दिया था उसने, बड़ी संत प्रकृति की थी, बहुत दिन तक थी। बाद में वो जब पधार गई, पधारने का समय आया, हम महाराज के निकट रहते थे, खाक चौक वाले महाराज जी ने हमको बुलवाया, बोले कि इसको गीता सुना दो, और बहुत द्रवित होकर कहा इस ये जा रही है, अब इसको मरते मरते गीता सुना दो। लोग अपने पिता माता मरने लग जाए तो गीता सुना दो, भागवत सुना दो, ये नहीं सोचते। संत के हृदय की करुणा कैसी, स्थान की गाय शरीर छोड़ रही, बोले इसको गीता भी सतनाम सुना दो, ठीक सुना देते हैं। तो कंबल बिछा दिया, वहां बैठ, नहीं नहीं यहाँ नहीं, उसके कान के पास में बैठ के सुनाओ, सीधा शब्द उसके कान में जाए। गाय तो बहुत बिचारी तड़प रही थी, उसके निकट पहुंच करके जोर 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 से सुनाओ, तो विष्णु सहस्रनाम गीता जोर जोर से सुनाने लगे। अष्टादश अध्याय गीता संपन्न भई, विष्णु सहस्रनाम पूर्ण हुआ, महाराज ने उसके मुख में चरणामृत दिया, तुलसी दल दिया, और जैसे ही सर्व प्रहरणायुध ओम नम इति, बस गौ ने शरीर छोड़ दिया। सुंदर उसको रामनामा उड़ाया और जमुना जी उसको भेजा। और हमको पुरानी बात है, हम समझते हैं 15, 10, 12, 13, 13-14 साल हो गए, 11 रुपए दक्षिणा दिए, अब हमको बड़ा भय लगा, हम कि महाराज जी हम आपसे ये काहे को दे रहे हैं, तो नहीं नहीं लो, तुम ब्राह्मण हो, नहीं लोगे तो सो का कल्याण कैसे होगा, तो गीता सुनाइए। अब हम तो उनसे भी कुछ नहीं बोल सके, बड़े धर्म संकट में पड़ गए, क्या करें, महाराज जी के निकट आए, महाराज जी क्या करें। महाराज जी बोले गोपेश्वर महादेव हैं, ये पशुपतिनाथ हैं, वो गोलोक की, गोलोक के जो है वो ग्वारिया पशुपतिनाथ हैं, शंकर जी वो पालक हैं, वो तो जाओ गोपेश्वर में, ये जो 11 रुपया दिए हैं इनके बिलपत्र फूल और दूध आदि जो कुछ है उनकी पूजा कर दो 11 रुपये से। वो 11 रुपये लेके गए तो उस समय में, अब तो बहुत महंगी मालाएं आती हैं, 11 रुपये में खूब बढ़िया सुंदर माला आ गई, पेड़ा भी आ गए, गुलाब के फूल की मोटी माला भी आ गई, बिलपत्र भी आ गए। वो 11 रुपये ठाकुर जी की, गोपेश्वर जी की पूजा कर दिए, बाकी बचा हुआ पैसा चढ़ा दिया इस तरह से। तो ये संतों के निकट रहकर देखने को लोग कितनी करुणा उनके हृदय में। इसके बाद में उसका संस्कार होगा, उसके बाद में उसका भंडारा भी, एक दिन ठाकुर जी को भोग लगेगा गौ माता की तरफ से, ये करना। इसलिए श्री यमुनाचार्य जी महाराज ने एक स्तोत्र में कहा है, तब दास्य सुखई कसंगी नाम, आपके दास्य में ही जिनको सुख की अनुभूति हो रही है, ऐसे महात्मा वैष्णव उनके घर की नाली का कीट हमें बना दो, हम अपना सौभाग्य समझेंगे। लेकिन भक्ति से शून्य यदि ब्रह्मा का लोक हो तो हमें ब्रह्मलोक का निवासी नहीं बनाना, वैष्णव के घर की नाली का कीड़ा बना देना, क्योंकि वैष्णव के हृदय में अपार करुणा होती है और वैष्णव के संपर्क में रहने वाले जीव जंतु भी भगवत प्राप्ति के अधिकारी हो जाते हैं। मनुष्य की तो छोड़ दो, संत की सन्निधि में रहने वाले कीट पतंग भी भगवत धाम को प्राप्त करते हैं, ऐसी संत की महिमा है। कहां तक कहा जाए, इतनी संत की महिमा है कि किसी विमुख से विमुख प्राणी का मृत शरीर जा रहा हो और कोई बाबा की कोटि के कोई संत यदि उस मृत शरीर के ऊपर दृष्टिपात कर दें तो वो भी भगवत धाम का अधिकारी हो जाता है निष्पाप होकर। मृत शरीर नहीं, चिता जल रही हो और चिता की ओर किसी अनुरागी संत की दृष्टि पड़ जाए वो भी भगवत धाम का अधिकारी हो जाता है। संत की चिता का धुआं लग जाए तो अधोगति को प्राप्त जीवों की मुक्ति हो जाती है। भक्तमाल में कथा है ऐसी, अधोगति को प्राप्त जीव प्रेतात्मा मुक्त हो गए। मामा जी ने पद के रूप में भी उनकी अलग से रचना भक्त चरित्र में की है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये भक्तों की संत की बहुत बड़ी महिमा है, उनमें बड़ी करुणा होती है, प्राणी मात्र के सच्चे हितैषी होते हैं, अजात शत्रु होते हैं, उनका ही शत्रुता किसी में भी नहीं होती। अजात शत्रु का तात्पर्य है शत्रु उत्पन्न ही नहीं होता, शत्रुता का भाव भी उनका किसी के प्रति नहीं बनता। शांता वे शोभ रहित होते हैं, शांत होते हैं, परोपकारी होते हैं और साधुता ही उनका आभूषण होती है, अथवा ऐसे संत साधु समाज के आभूषण होते हैं, अथवा ऐसे संत साधु समाज को सुशोभित करने वाले होते हैं। और साधु भूषणा का एक अर्थ है साधुन भूषयंती, साधुओं को सुशोभित करने वाले वैष्णव चिन्ह, ऐसे वैष्णव चिन्हों से संपन्न वे महात्मा हो तब तो सोने में सुगंध है, कहना ही क्या है, ऐसे वे महात्मा होते हैं। साधु शब्द का अर्थ होता परोपकारी, वे परोपकारी होते हैं। पर उपकार वचन मन काया, मन वाणी क्रिया से परोपकार करते हैं, यही संत का साधु स्वभाव है, यही संत का स्वरूप है। साधु शब्द का अर्थ परोपकारी होता, लेकिन संत और अच्छी प्रकार से समझाते, संतों के द्वारा किया हुआ जीवों के ऊपर उपकार क्या है। हमारे वृंदावन में बाबा श्री नवल किशोर दास जी, चैतन्य कुटी वाले, पानी घाट वाले बाबा, बड़े अच्छे संत थे। दास के ऊपर बड़ा अनुग्रह था, जब जाते तो कहते गीत गोविंद सुना, और जिस दिन शरीर छोड़ना था उस दिन भी अर्धमूर्छित स्थिति में हमारा स्मरण किया होगा गीत गोविंद सुनवा, हम तो खैर नहीं पहुंच सके। बड़े अच्छे संत थे, उनके निकट गए, एक दिन हमसे बोले साधु शब्द का क्या अर्थ होता है, तो हमने कहा महाराज जी राग साध संसिद्ध धातु से औणादिक प्रत्यय होकर साधु शब्द बनता है, इसका अर्थ होता है जो परोपकार परायण हो उसे साधु कहते, साधनोति परकारी मिति साधु। हंस करके बोले ये तो अर्थ है ही है, एक और याको अर्थ है। ये क्या महाराज, बोले साधनोति परम परमात्मानम श्री कृष्णम असौ साधु, जो पर माने परमात्मा श्री कृष्ण को साध ले, उनके चरण कमलों को प्राप्त कर ले वो साधु, और उन श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति करा दे वो साधु। संतों का सबसे बड़ा परोपकार यही है कि वे श्री कृष्ण की प्राप्ति कराते हैं। कितना सुंदर अर्थ बताया, ये किसी टीका में नहीं लिखा, ये तो संतों के हृदय में प्रकट होते हैं अर्थ। शिव वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। अब संतों की वृत्ति कैसी होती है, मैं अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ा मत्कृते त्यक्त कर्माणः त्यक्त स्वजन बान्धवा। भगवान कपिल कह रहे हैं माताजी वह संत भक्त जो हैं हमारी अनन्य भाव से दृढ़ भक्ति करते हैं। भक्ति के दो विशेषण हैं, एक तो अनन्य भाव और एक दृढ़। अनन्य भाव का तात्पर्य होता है सर्वाधिक प्रीति मेरे ही चरणों में करते हैं। भावो नान्यत्र गच्छतु, भगवान के अतिरिक्त उनका भाव कहीं भी नहीं जाता, सर्वतो भावेन भगवान की आराधना करते अनन्य भाव से और दृढ़ भक्ति करते हैं। दृढ़ माने होता है पुष्ट मजबूत, दो तरह की भक्ति है, एक दृढ़ और दूसरी अदृढ़। अदृढ़ भक्ति ये है कि संत का संग मिला और भक्ति करने लग गए, नाम जपने लग गए, कथा सुनने लग गए, कीर्तन भी करने लग गए, सदग्रंथों को पढ़ने लग गए। तो थोड़े दिन तक वो प्रभाव रहा, धीरे धीरे विमुखों का संग मिला। अरे तुम भी क्या चक्कर में पड़ गए, तुम कोई सन्यासी हो? अरे घर के लड़के बच्चे पालो पोसो, व्यापार करो, दुकान करो, क्या ये भाग पाठ पूजा भजन के चक्कर में पड़ गए? ऐसे 10-5 विमुखों ने कहा, बस छोड़ दी भक्ति, जैसे पहले थे वैसे ही फिर हो गए। इसको कहते हैं अदृढ़ भक्ति। दृढ़ भक्ति का तात्पर्य होता है चाहे जितनी विपत्ति आवे, चाहे जैसा संकट आवे, भजन घटे नहीं बढ़ता चला जाए, उसको दृढ़ भक्ति कहते हैं। अनन्य भाव से दृढ़ भक्ति करते हैं संत। और मत कृते त्यक्त कर्माण, मेरे निमित्त संपूर्ण कर्मों का त्याग कर देते हैं। इसका तात्पर्य होता है कर्मों का त्याग संभव नहीं है, इसका तात्पर्य यही है कि वे संपूर्ण कर्मों को मेरी प्रसन्नता के लिए करते हैं और करने के बाद मेरे चरण कमलों में ही उन कर्म फलों का समर्पण कर देते हैं।